ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय स्ट्रेस फ्री लिविंग थ्रू स्पिरिचुअलिटी। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ के वातावरण में तनाव कहो, टेंशन कहो, स्ट्रेस कहो, लेकिन आज तो उससे भी दो कदम आगे बढ़कर के जो डिप्रेशन है वो चारों तरफ देखने में आता है। चाहे छोटी आयु के बच्चे हैं, चाहे युवा हैं, चाहे वृद्ध हैं, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ दबाव जीवन के अंदर महसूस करते हैं। स्ट्रेस को अगर हम एक इक्वेशन के रूप में देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। स्ट्रेस क्या चीज है? जीवन में प्रेशर बहुत सारे हैं, लेकिन उनका सामना करने की, उनको फेस करने की जो शक्ति है वो आज इंसान के पास नहीं है, आंतरिक शक्ति। और वो हमारी आंतरिक शक्ति अगर हम बढ़ा लें तो चाहे कितने भी प्रेशर्स हों, हम कभी दबाव में, तनाव में नहीं आ सकते हैं। डिनोमिनेटर को अगर हम ऊंचा कर लेते हैं तो हमारा जो तनाव है वो जीरो की तरफ चला जाता है। और उसके लिए, क्योंकि परिस्थितियां तो कुछ ना कुछ जीवन में रहेंगी ही, ऐसा नहीं है कि सब बातें, सब समस्याएं, सब परिस्थितियां जीवन से खत्म हो जाएंगी, लेकिन उनके प्रति हमें अपना दृष्टिकोण, हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अब इस चीज को हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि एक बार एक संत थे, वो कहीं लंबी यात्रा करके और वापस अपनी कुटिया की तरफ जंगल में आ रहे थे। उनका एक युवा शिष्य, वो भी उनके साथ था। तो जब वो अपनी झोपड़ी के नजदीक आए तो उन्होंने दूर से क्या देखा कि झोपड़ी का जो आधा छप्पर था वो उड़ चुका था, क्योंकि बारिश का टाइम था, तेज हवाएं चल रही थी, तो जो आधा छप्पर था वो उड़ गया था। अब जैसे ही दूर से उस झोपड़ी को देखा तो जो बड़ा संत था उसने हाथ जोड़ करके भगवान का शुक्रिया किया कि हे भगवान, हवाओं का क्या भरोसा था, वो पूरे छप्पर को भी उड़ा सकती थी, लेकिन ये जो आधा बचा है ना, ये आपने ही बचाया है, आप हमारा कितना ध्यान रखते हो। लेकिन जो यूथ शिष्य था उसका, उसने जैसे ही वो आधा छप्पर देखा तो भगवान को कोसने लगा कि हे भगवान, बड़े बड़े अमीरों के महल, उनकी कोठियां खड़ी हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ, और हमारा एक ये टूटा फूटा छप्पर था, हम रोज आपकी उपासना करते हैं, साधना करते हैं, और आपने इसका भी आधा छप्पर उड़ा दिया। अब देखिए, परिस्थिति एक ही है लेकिन उसको देखने का ढंग, उसके बारे में सोचने का ढंग, इसको कहते हैं नजरिया, वो दोनों का अलग अलग था। उसी परिस्थिति के अंदर जो ज्ञानवान है, जो धीरज वाला है, बड़ा गुरु, वो खुश हो रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है कि आधा तो बच गया। लेकिन उसी परिस्थिति में एक युवा जो है वो सोच रहा है नेगेटिव ढंग से, तो दुखी हो रहा है। उसके बाद दोनों अपनी झोपड़ी के नजदीक आए, झोपड़ी में रात को सोए, अब जो है ना, जो युवा था वो तो सारी रात करवटें ही बदलता रहा शिष्य, क्योंकि बड़ा बेचैन था, और जब बेचैनी हो तो नींद कहाँ आती है। लेकिन जो उनका गुरु था वो रात को बड़े आराम से सोया, और सुबह उठ करके उसने फिर से भगवान का धन्यवाद किया कि हे ईश्वर, रात को आधे छप्पर में से आपके तारों को देखा, चंद्रमा को देखा, जब जब नींद खुली बड़ा आनंद आया। लेकिन सुबह उठ करके जो शिष्य था वो फिर से भगवान को गालियां देने लगा। तो देखिए, सुख और दुख क्या चीज है, ये हमारे नजरिए पर, ये हमारी सोच पर कि दुनिया की परिस्थितियों को, व्यक्तियों को हम किस नजर से देखते हैं, उसी से जीवन के अंदर अशांति या तनाव पैदा होता है। तो हमारी सोच के अंदर पैदा होता है। एक व्यक्ति डनलप के गद्दों पर बैठा हो, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन उसके सामने हो, एसी रूम हो, लेकिन उसके मन में कोई तनाव है, कोई चिंता है, तो वो चैन की नींद सो नहीं सकता। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जिसके मन में धीरज है, संतोष है, वो रूखी रोटी खा करके फरश पर भी लेट जाएगा तो उसे नींद आ जाएगी। तो सुख, चैन, नींद कहां पर आधारित है? मनुष्य की सोच पर आधारित है। यदि सोच अच्छी है तो जीवन खुशनुमा है, यदि सोच गलत है तो जीवन में दुख अशांति है। तो हमारी ये सोच कहां है, हमारे अंदर कहां सोच चलती है? तो आपने कल मेडिटेशन का लेसन किया होगा आत्मा के बारे में, जिसमें बताया कि हम सबके अंदर एक चेतना शक्ति है, एक आत्मा है, और उस आत्मा की तीन चेतन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जो सोच चलती है वो कहां चलती है? मन के अंदर चलती है। अब उस मन की सोच को हम ठीक कैसे करें, क्योंकि मन अच्छा, कहते ना मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। और भगवान के ये भी शब्द हैं कि मनुष्य के बंधन का और उसकी मुक्ति का जो कारण है वो केवल उसका मन है। मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन का कारण भी मन है और उसकी मुक्ति का कारण भी मन है। अब इस मन के अंदर जो सोच चलती है वो कहां से खराब होती है, उस पर हमें थोड़ा विचार करने की जरूरत है। तो देखो, जब भी हम कुछ भी मन के अंदर नेगेटिव सोचते हैं, कभी कभी जीवन में बहुत अच्छी बातें भी होती हैं और कभी कभी जीवन में कुछ गलत बातें भी हो जाती हैं, तो जो हमारे मन में सोच चलती है उसका कारण हम कहीं ना कहीं बाहर उंगली करते हैं। जिस दिन हम बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, तो हम कहेंगे उसके कारण, और वो कारण या तो किसी व्यक्ति का हम देते हैं और या किसी ना किसी परिस्थिति का देते हैं कि ये बात जीवन में हो गई, या उस व्यक्ति के कारण मैं परेशान हूं, या उसने मेरे साथ जो गलत व्यवहार किया उसके कारण मैं दुखी हूं। और कभी कभी हम बड़े खुश होते हैं तो उसका कारण भी हम कहीं कहीं बाहर ही बताते हैं कि आज मेरे जीवन के अंदर ये मैंने नई अचीवमेंट की, ये नई चीज खरीद ली, कोई नया भवन बना लिया, कोई नई गाड़ी ले ली, तो आज बड़ी खुशी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी खुशी या हमारा दुख उसके कारण केवल हम बाहर देख रहे हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बाहर सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, तब मेरे जीवन में तनाव नहीं होगा। लेकिन क्या ये संभव है कि बाहर सब कुछ ठीक हो जाए, हर व्यक्ति वैसा ही करे जैसा मैं चाहूं और जीवन में हर बात हर परिस्थिति वैसी ही आए जैसा मैं चाहता हूं? क्या ये संभव है? है संभव? नहीं है ना, क्योंकि हर व्यक्ति वैसा व्यवहार नहीं करेगा जो मेरी अपेक्षा है और हर परिस्थिति वैसे नहीं आएगी जैसे मैं चाहता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी खुशी या मेरा दुख वो कहीं ना कहीं बाहर आधारित है, मैं डिपेंडेंट हो गया, दूसरों पर मैं आधारित हो गया कि दूसरा कोई खुशी से बोले, मेरा सम्मान करे, मुझे प्यार दे तो मैं खुश, और दूसरा अगर कुछ ऊपर नीचे बोल दे तो मैं नाराज। कोई परिस्थिति ठीक आई तो मैं खुश, अगर गलत आई तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अधीन हो गए, हम गुलाम हो गए, दूसरों के अधीन हो गए, यानी मेरे मन की स्थिति का जो रिमोट है वो दूसरों के हाथ में है। कोई चाहे तो मेरी प्रशंसा करके मुझे फुला दे और कोई चाहे तो मेरी निंदा करके, ईर्ष्या करके या कटु वचन बोल करके मेरे मन की स्थिति को खराब कर दे। तो रिमोट दूसरों के हाथ में हो गया। क्या हम चाहेंगे कि हमारे मन की स्थिति का, हमारी खुशी का, हमारी निराशा का रिमोट दूसरों के हाथ में हो? चाहेंगे हम ये? घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा है ना, वो भी ये चाहता है कि टीवी का रिमोट मेरे पास होना चाहिए। तो हमारे मन की स्थिति का रिमोट किसके पास होना चाहिए? किसके पास? केवल बाहर दूसरों के पास? कई बार तो यहां तक भी होता है कि किसी ने घर की बेल जोर से बजा दी, उससे भी हम इरिटेट हो गए। मतलब मेरा रिमोट बेल के पास भी है। किसी दिन सर्वेंट घर में नहीं आई, बीमार हो गई, कुछ काम पड़ गया तो मेरे मन की स्थिति खराब। इसका मतलब मेरे मन का रिमोट उस सर्वेंट के पास भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे सिवाय मेरी खुशी और शांति का रिमोट सबके पास है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? किसके पास होना चाहिए रिमोट? मेरे पास होना चाहिए। और मेरे पास रिमोट रहे उसके लिए मुझे अपने मन का मालिक बनने की जरूरत है, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं और मन मेरी ही एक शक्ति है। मुझे अपने मन का मालिक खुद बनना है। तो उसके लिए हम दो तीन संकल्प अपने जीवन के अंदर पक्के कर लें। पहला संकल्प ये हो कि मेरे संकल्प का रचयिता मैं हूं। आई एम क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। मैं मालिक हूं कि नहीं मन का? मैं जो चाहूं वो सोच सकता हूं। तो मैं अपने संकल्पों की रचना का मालिक हूं। दूसरा विचार हमें ये मन के अंदर रखना है कि आई कैन चेंज माई थॉट्स। मैं मालिक हूं तो मैं अपने मन के विचार को चेंज भी कर सकता हूं। और तीसरा थॉट कि उस चेंज के लिए मेरे पास मन का, आत्मा का ज्ञान और शक्ति होनी चाहिए, नॉलेज एंड पावर। तो ये जो हम मेडिटेशन सीखते हैं, तो इस मेडिटेशन में हमें एक तो ये ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है कि मैं अपने मन का मालिक हूं। और दूसरा, जब मन को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तो उससे पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, अपने मन को जिस दिशा में चाहे उस दिशा में मोड़ने की। देखो, हम देखते हैं कि दुर्योधन ने भी ये स्वीकार किया कि मैं जानता हूं धर्म क्या है और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मेरे पास धर्म पर चलने की शक्ति नहीं है। जानामि धर्मम नच मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम नच मे निवृत्ति। मैं जानता हूं अधर्म क्या है पर उसको छोड़ने की ताकत नहीं है। आज इंसान की स्थिति भी तो यही है ना, जानता है कि शराब पीना गलत है, जानता है झूठ बोलना गलत है, जानता है गलत काम करना गलत है, लेकिन फिर भी उससे बच नहीं पाता है। तो वो बचने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, हमें मेडिटेशन की जरूरत है। और ये जो आपको शिविर कराया जा रहा है, ये जो स्पिरिचुअल पावर आध्यात्मिक जो शक्ति है, इससे हम अपने मन के राजा बन सकते हैं। और जब हमारा मन शक्तियों से भरपूर हो जाता है मेडिटेशन से, तो हम मन से जितना सोचना चाहेंगे, जैसा सोचना चाहेंगे वैसा सोचेंगे, और जहां हम फुल स्टॉप लगाना चाहेंगे वहां हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे। और ये जो पावर है, ये जो रिमोट है, ये मेरे हाथ में तभी आएगा जब मेरा मन उस ईश्वर पिता के साथ जुड़ेगा। हर रोज थोड़ी देर के लिए भी अगर हम मेडिटेशन करते हैं सवेरे सवेरे, तो दिन भर जैसे रिमोट मेरे पास रहता है, मन को चलाने वाली जो शक्ति है वो मैं आत्मा हूं। तो इसलिए अपने मन पर हमें ये कंट्रोल करना है। उसके साथ साथ अपने जीवन से स्ट्रेस को कम करने के लिए एक बात को जीवन में हमेशा याद रखना है कि अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है। क्योंकि आज जीवन में बहुत सारा तनाव उसका कारण है लोनलीनेस फीलिंग, अकेलेपन की जो फीलिंग है ना। और ऐसा नहीं है कि जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं तो ही अकेलेपन की फीलिंग आती है। आज घर के अंदर 10 लोगों के बीच में रहते हुए भी कई बातें हम बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। एक रियल स्टडी की गई कि एक 32 साल के नव युवक को हार्ट अटैक आया, हार्ट फेल हो गया। तो जब उसका उसकी जो लाइफ हिस्ट्री थी उसको स्टडी किया गया, तो उसमें ये देखा गया कि वो अपने माता पिता का अकेला बेटा था, इकलौती संतान थी। जब उसकी शादी हो गई तो थोड़े समय के बाद पत्नी ने कहा कि तुम माँ से, पेरेंट्स से अलग रहो। अब वो अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि इकलौती संतान थी, और पत्नी का कहना ना माने वो भी उससे बन नहीं पाता था। तो वो अंदर ही अंदर किसी को कुछ कह नहीं सकता था, तो अंदर ही अंदर एक गहरा जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो फील करता था। और अकेलापन अपने आप से ही वो सोचता रहता था, क्योंकि ये समस्या कोई भी हल नहीं कर सकता था। और उस अकेलेपन की फीलिंग से, क्योंकि थॉट्स जो थे वो बड़े डिप्रेशन वाले थे, टेंशन वाले थे, और जैसा हम हमारा जो एक एक विचार है उससे टॉक्सिक रिलीज होते हैं। अगर वो थॉट्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें, और अगर वो थॉट्स नेगेटिव हैं तो नेगेटिव एनर्जी मिलती है, टॉक्सिक मिलते हैं। और धीरे धीरे उसकी आर्टरी जो है वो ब्लॉक होती गई, क्योंकि आज मेडिकल साइंस और विज्ञान इस चीज को मानता है कि 90-92% जो हमारी शारीरिक बीमारियां हैं उनका कारण हमारे मन की सोच है। तो गलत सोचते सोचते जो टॉक्सिक रिलीज हुए बॉडी के अंदर, तो उससे आर्टरी ब्लॉक हुई और धीरे धीरे जो है वो हार्ट फेल्योर। आज हम देखते हैं ये हार्ट फेल्योर युवा अवस्था के अंदर 30, 32, 25 साल के युवकों को भी हो रहा है, क्योंकि टेंशन जीवन में बहुत है। तो इस प्रकार से जो है ना, कैसे अकेलेपन की फीलिंग, एक व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तब भी वो एक अकेलापन फील करता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, वो अपने काम में मस्त हो गए, या कोई छोटे मोटे काम उसको दे देते हैं, बच्चों को स्कूल में छोड़ के आ जाओ और जो है ना सब्जी ले आना, ये कर लेना। कहां वो सोचता था, मैं ऑफिस में था तो सब मुझे सर कहते थे, सल्यूट करते थे, तो एक अंदर ही अंदर अकेलापन, और उससे फिर जो टॉक्सिक बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं वो बीमारियों को जन्म देते हैं। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल पावर है वो हमें एक बहुत बड़ा सहारा देती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ वो सर्वशक्तिवान ईश्वर है, भगवान है, जिसका परिचय आज आपने सुना अभी सुबह के सत्र में उषा दीदी जी के द्वारा, कि वो गुणों का भंडार है, वो सुख शांति का सागर है, और उसके साथ मेरा संबंध क्या है, वो मेरा सच्चा माता पिता है। तो पिता के पास जो कुछ भी होता है वो किसके लिए होता है, बच्चे के लिए होता है। मेरा पिता शांति का सागर है, सुख का सागर, आनंद का भंडार, गुणों का सागर है, वो मेरा पिता है, बहुत नजदीकी संबंध है। अगर मैं अपने मन का रिश्ता उसके साथ जोड़ लूं तो मैं ना अकेला हूं और ना मैं शक्तिहीन हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, क्योंकि उस प्रभु पिता का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। तो जीवन में कभी भी अपने को अकेला नहीं समझना, भगवान मेरे साथ है, सदा इस फीलिंग के अंदर रहो। अगर वो साथ है तो उसकी शक्तियां भी साथ हैं, उसकी ब्लेसिंग भी मेरे साथ है, उसकी दुआएं भी मेरे साथ हैं। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि एक बार एक प्लेन के अंदर कुछ यात्री जा रहे थे और उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची भी बैठी थी, 8 साल की बच्ची। अचानक अनाउंसमेंट हुई कि मौसम बहुत खराब है और कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा खराब था और ऐसा लगता था कि शायद कुछ ऐसा घटित हो जाएगा। तो सारे जो पैसेंजर थे वो बड़े परेशान हो गए और वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे और बड़े अधीर्य हो गए। लेकिन वो जो एक छोटी बच्ची थी 8 साल की, वो बड़े शांत भाव से बैठी थी। तो थोड़ी देर के बाद थोड़ा टाइम गुजरा और फिर से अनाउंसमेंट हुई कि अब परिस्थिति कुछ ठीक हो रही है और सब अपनी सीट पर आराम से बैठे रहे। तो फिर बाद में कुछ लोग उस बच्ची को देख रहे थे, तो एक व्यक्ति ने उस छोटी बच्ची से पूछा कि इतनी हलचल हुई और ऐसी अनाउंसमेंट हुई कि बड़े बड़े भी सब घबरा गए और तुम बड़े शांत भाव से बैठी थी, तो तुम क्या सोच रही थी उस समय, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उसने कहा कि मेरे पापा इस प्लेन के पायलट हैं और मुझे ये विश्वास है कि मैं इसमें बैठी हूं और वो मेरी सुरक्षा जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। देखो एक छोटे बच्चे का विश्वास कितना अटल है। ये जरूरी नहीं कि उस लड़की का पापा सदाई प्लेन चलाए और हर परिस्थिति से उसको सेफ रखे, लेकिन फिर भी उसका अपने पिता पर कितना अटूट विश्वास है। तो हम सब रोज क्या कहते हैं, हे भगवान तुम मात पिता हम बालक तेरे, कहते हैं कि नहीं? तो भगवान हमारा मात पिता है, अविनाशी है, वो कभी खत्म भी नहीं हो सकता, उसके पास शक्ति भी अनंत है और वो मेरा पिता है। और केवल मात पिता ही क्या, भगवान के लिए हम क्या गाते हैं कि हे ईश्वर त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और अंत में कहेंगे त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे भगवान तुम मेरे सब कुछ हो। तो जो सब कुछ है, जो समर्थ है, जिसके साथ बहुत नजदीक का रिश्ता है, क्या हमें उस पर उस बच्ची जैसा अटूट विश्वास नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? वो हमें जीवन की हर परिस्थिति से पार ले जा सकता है कि नहीं? ले जा सकता है ना। तो इसलिए हमें कभी भी बोझिल नहीं होना, कभी परेशान नहीं होना, कितनी भी बड़ी बात आ जाए लेकिन भगवान से ज्यादा शक्तिशाली जीवन की कोई परिस्थिति नहीं है, वो सबसे ऊपर है और वो सदा मेरा रक्षक है, शिक्षक है। आज उनका परिचय सुना ना हमने, तो इसलिए ये अटूट विश्वास होना चाहिए कि अगर भगवान मेरे साथ है तो कोई मेरा बुरा कर नहीं सकता। ठीक है, टेंशन फ्री के लिए कभी अपने को अकेला नहीं समझना। उसके साथ साथ हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि कभी भी हमें जीवन में बोझिल होते हैं, हम तनाव होता है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम छोटी छोटी बातों को मन के अंदर, चित्त के अंदर पकड़ के रखते हैं। बात 2 साल पहले हो गई, 5 साल पहले हुई, हम किसी के घर में गए, किसी ने थोड़ा सा हमारा मान सम्मान नहीं किया, बैठने के लिए नहीं पूछा, तो हम वो छोटी सी बात या किसी ने 2 शब्द हमें ऐसे कह दिए जो हमें अच्छे नहीं लगते थे, उसने एक लाइन बोली और मैंने खुद उस लाइन को 100 बार, 500 बार, 1000 बार मन के अंदर रिपीट कर लिया 5 साल में। उस व्यक्ति ने एक लाइन बोली और 1 मिनट खराब किया, 1 मिनट से भी कम टाइम, और मैंने खुद वही लाइन खुद को बोल बोलकर कितना समय, कितनी शक्ति जीवन की वेस्ट कर दी। तो ज्यादा नुकसान उस व्यक्ति ने पहुंचाया या मैंने खुद खुद को पहुंचाया? किसने ज्यादा पहुंचाया? है? खुद खुद ने पहुंचाया। उसने तो सिर्फ एक ही लाइन, एक ही मिनट खराब किया था। क्यों किया? क्योंकि हमने उस बात को मन के अंदर पकड़ के रखा हुआ है, किसी कोने में उसको पकड़ा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बच्चे छोड़ो तो छूटो, लेट गो करते जाओ, बातों को भूल जाओ। किसी ने कुछ भी कहा तो एक बड़ा सुंदर शब्द है कि हम उनको क्षमा कर दें, क्षमा भाव। और ये क्षमा करना, ये हम उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं, ये हम अपने आप को क्षमा करते हैं। ये उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे। अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं, भूल जाते हैं और उसके लिए शुभ सोचते हैं, तो हम अपने आप को, क्योंकि मेरा समय, मेरी शक्ति वेस्ट जाने से बच जाएगी। तो क्षमा करना चाहिए कि नहीं, बताओ? मान लो किसी ने गलत भी किया तो हमें क्षमा करके आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? क्योंकि कई बार हम पता क्या बोलते हैं, कहते हैं कि मैं और सबको क्षमा कर सकता हूं, पर उस व्यक्ति, ये बात तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि मैं जीवन भर दुखी ही रहूंगा, परेशान ही रहूंगा, ये सोच सोच करके। तो ये नुकसान हम किसका करते हैं? अपने आप का करते हैं। तो क्षमा करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो, और दिल से क्षमा करो, ऊपर ऊपर से नहीं, माफ करो। और उसके लिए भी एक अच्छा संकल्प रचो कि हे ईश्वर, इस आत्मा को भी सद्बुद्धि देना, शांति देना, और उस चीज को बिल्कुल फिनिश कर दो। तो सचमुच में देखेंगे कि बड़े लाइट हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, किसी भी चीज को हम पकड़ के रखते हैं ना, तो हम खुद ही बोझिल होते हैं, भारी हो जाते हैं, और उस बात की एक गांठ बन जाती है हमारे मन में। देखो, हार्ट में जो ब्लॉकेज होती है ना, वो तो बॉडी के जो मतलब टॉक्सिक होते हैं उसके कारण वो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, और डॉक्टर ऑपरेशन करेगा फिर कहेगा कि 10 साल बाद फिर हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो जो टॉक्सिक रिलीज हुए वो यहां से हुए, मन की गलत सोच से। कोई बात पकड़ रखी है, उसको सोच रहे हैं, अब वो तो रिमूव कर दिया, आर्टरी जो है ना बाईपास कर दी डॉक्टर ने, दूसरा रास्ता निकाल दिया, लेकिन फिर हम टेंशन में रहते हैं, फिर टॉक्सिक रिलीज होंगे और फिर से वो आर्टरी ब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी। तो असली ऑपरेशन कहाँ करना है? यहां करना है, अपनी सोच में करना है। जो चीजों की गांठ बांध रखी है ना मन में, वो गांठें हमें खोलनी है। तो ये हमें पक्का करना है, क्योंकि हमें स्ट्रेस फ्री होना है, इजी लाइफ में रहना है। तो इसलिए बातों को कभी भी पकड़ के नहीं रखना है। उसके साथ साथ अपने मन की खुशी के लिए और बिल्कुल इजी रहने के लिए, बिल्कुल हल्का रहने के लिए, हमें दिया बनना है। दिया, देखो दीवा जो जलाते हैं ना हम, कोई भी शुभ कार्य होता है दीपक जलाते हैं तो कहते हैं दिया जलाया। तो दिया जलना शुभ होता है और दिया बुझना क्या होता है? अशुभ मानते हैं उसको, दिया बुझ जाए। तो हमें अपने घर का दिया बनना है, क्योंकि अकेला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, उसे अपने आसपास के माहौल में भी खुशी को भरना, शांति को भरना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें अपने जीवन से कुछ ना कुछ दूसरों को देना है। लेकिन हम इसके उलट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम मांगते रहते हैं। घर में क्या कहेंगे? प्यार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। सास कहेगी बहू ने मेरे से प्यार से बात नहीं की, मेरा मान सम्मान नहीं किया। बहू भी कहेगी कि मैं दूसरे घर से आई हूं, मेरा सम्मान नहीं होता, मुझे प्यार नहीं मिलता। पिता कहेगा पुत्र मेरा रिस्पेक्ट नहीं रखता, मेरी बात को नहीं मानता। और जो आजकल की जनरेशन है वो भी कहेगी कि ये अब पुराने हो गए, इनको तो कुछ पता नहीं है, ये हमारी बात को समझते नहीं है। तो हर कोई मांग रहा है लेकिन दे कोई नहीं रहा। तो हमें अपने अपने घर का, देखो एक घर में अगर एक भी दिया जलता रहे तो उस घर के अंदर रोशनी रहेगी, रहेगी कि नहीं? तो हमें अपने अपने घर का दिया बनना है। दिया, दिया माना देवता, देवताएं हमेशा देते हैं, ऐसे हाथ होते हैं। मंदिर के अंदर आप जाते हैं ना तो देवताओं का या तो वरदानी हाथ होगा ऐसे, और या लक्ष्मी जी का हाथ ऐसे देने वाला दिखाते हैं। तो देने वाला माना देवता। और अगर हम देखें तो ये जो सारी प्रकृति है ये भी हमें हर पल दे रही है, दे रहे कि नहीं? जल है, वायु है, है सूर्य की धूप है, सब कुछ वो मिल रहा है प्रकृति से जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 सिलेंडर ऑक्सीजन यूज कर लेता है और हम प्रकृति को दे क्या रहे हैं? एक व्यक्ति जीवन भर के अंदर 10 वृक्षों के समान लकड़ी प्रयोग कर लेता है, और एक वृक्ष की लकड़ी तो उस दिन चाहिए जिस दिन इस दुनिया से विदा होंगे। ये कौन दे रहा है? ये हमें वृक्ष दे रहे हैं, ये प्रकृति हमें दे रही है, और उसके बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती है। कुछ मांगती है? देती ही देती है। इसलिए हर जो प्रकृति का तत्व है उसे भी देवता कहा गया है। तो हमें अपने घर का देवता बनना है। कोई दे या ना दे लेकिन मुझे सबको प्यार से बात करनी है, सम्मान देना है, प्यार देना है, सबको दुआएं देनी है। हमें ये अपेक्षा नहीं रखनी है कि कोई हमें देगा तो हम देंगे। कई बार हम ऐसे कहते ना, अगर वो प्यार से बोलेंगे तो हम प्यार से बोल लेंगे, तो ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है। व्यापार में क्या होता है? कोई कुछ देता है तो फिर कोई कुछ लेता है। तो हमें शांति, प्रेम और खुशी ये देना ही देना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और अपनी सोच को अच्छा बनाने के लिए, सदा खुशनुमा रहने के लिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हमें जीवन में समझना है कि हमारा जो एक एक विचार है हमारा जो एक एक संकल्प है, तो कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची जाती है, संकल्प से सृष्टि, और दूसरा कहते हैं संकल्प से संस्कारों से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि, संकल्प से सिद्धि और संस्कार से संसार। तो हमारे अंदर जो मन के अंदर संकल्प शक्ति है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा एक एक संकल्प कुछ क्रिएट करता है, रचता है, एक एक संकल्प हमारा रचना करता है। तो हमें अपने एक एक संकल्प पर बहुत ध्यान देना है। अब संकल्प पर हमें क्या क्या ध्यान देना है, उसके लिए दो तीन बातों का हमें विशेष अटेंशन रखना है। एक तो सुबह सुबह उठते ही हम अपने जीवन की एक आदत बना लें कि हमें सुबह सुबह शुक्रिया करना है, थैंकफुल। सवेरे उठते ही सबसे पहले हमें भगवान का शुक्रिया करना है कि हे ईश्वर, मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, उठ गया हूँ, आज का दिन मेरे पास है। कितने हजारों लोग ऐसे भी होंगे जो रात को सोते हैं और सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं सोच सकता हूँ, मेरी बुद्धि ठीक है, मेरे पांव ठीक हैं, मेरा हार्ट ठीक काम कर रहा है, तो हे ईश्वर आपका धन्यवाद है। सुबह सुबह उस परमात्मा का शुक्रिया। फिर अपने मन का शुक्रिया करो, अपनी आत्मा, अपने आप का शुक्रिया करो कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैं उसकी संतान हूँ। फिर अपने शरीर का भी शुक्रिया करो कि ये मुझे कितना अच्छा साथ दे रहा है। आत्मा इस शरीर में है तो जीवन है, तो अपनी इस बॉडी का भी शुक्रिया करो। फिर अपने परिवार का भी शुक्रिया करो, बच्चों का, परिवार का। कभी भी किसी के लिए मन के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं हो, कोई भी कंप्लेंट नहीं हो। जो भी है, जैसे भी है, बहुत अच्छे हैं, उनका भी शुक्रिया करें। और फिर जहां हम काम करते हैं, वर्क प्लेस, कई लोगों को उसके लिए भी बड़ी शिकायत रहती है कि ये अच्छा नहीं है, कहीं और एडजस्ट हो जाते तो अच्छा था, ये था, तो उसका भी हम शुक्रिया करें। और लास्ट शुक्रिया हम उन लोगों का भी करें जो हमारे लिए कुछ गलत करते हैं, हमारे काम में रुकावट डालते हैं, हमारी निंदा करते हैं, उनका भी शुक्रिया करो। शुक्रिया माना पॉजिटिव एनर्जी, उनकी जो नेगेटिविटी है वो इससे धीरे धीरे कम होती जाएगी। और उसके साथ साथ हमें एक बात विचारों के लिए अपने ध्यान में रखनी है कि हमें जीवन में केवल वो सोचना है जो हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं, जो हम जीवन में बनना चाहते हैं। हमें वो नहीं सोचना है जो हम हैं। ये एक इक्वेशन है जिसको अच्छी तरह से हम अंडरलाइन कर लें कि जो हम हैं, जो परिस्थितियां हैं, जैसा मेरा शरीर है वो नहीं सोचना है, जैसा मैं जीवन को देखना चाहता हूं वो सोचना है। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना दुनिया में, हम उन चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिनको हम सोचते हैं। हमारे आसपास इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी फ्लो कर रही है। अगर हमारे विचारों में नेगेटिविटी है तो नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब एक तो अपनी नेगेटिव, दूसरी इस वायुमंडल की नेगेटिव भी मेरी तरफ आ रही है, तो हम कितने नेगेटिव हो जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो मेरा मन तो पॉजिटिव है ही, लेकिन आसपास की पॉजिटिव एनर्जी वो भी मेरे अंदर आनी, मेरी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जीवन में जो कुछ है वो नहीं सोचना है। मान लो आपके शरीर के अंदर कुछ बीमारी है, बीपी थोड़ा हाई रहता है, शुगर है, वो नहीं सोचना है। भगवान कहते हैं ये सोचो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, भगवान मेरे साथ है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं और सदा स्वस्थ रहूंगा। धीरे धीरे वो पॉजिटिव एनर्जी, वो संकल्प की एनर्जी हमारी इस बॉडी के अंदर फ्लो करेगी और जो बीमारियों के टॉक्सिक हैं वो साफ होने शुरू हो जाएंगे। अगर मेडिकल साइंस के अनुसार 90% बीमारियां हमारी गलत सोच से पैदा हो सकती हैं, तो क्या 90% बीमारियां हमारी सही सोच से ठीक नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं? तो कोई बीमारी होते हुए भी हमें ये सोचना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, संपूर्ण स्वस्थ हूं, भगवान की जो एनर्जी है, शक्ति है, वो मेरे मन से मेरे तन में फ्लो कर रही है। आप देखेंगे धीरे धीरे बीमारियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो हम हैं वो नहीं सोचना, घर की परिस्थितियां कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, बच्चों के लिए भी अच्छा सोचो। कई बार हम बच्चों को गलत एनर्जी देते हैं सोच सोच के कि पता नहीं इसका क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, ये तो पढ़ाई में सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो हम जो गलत एनर्जी है वो दे रहे हैं। अपने बच्चों को हमें अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छी एनर्जी देनी है, क्योंकि स्ट्रेस तो उनके कारण भी होता है ना हमें, तो उनको पॉजिटिव एनर्जी देने से एक तो उनको वो एनर्जी मिलेगी तो धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप सबने शिवाजी का नाम तो सुना ही है ना, हमारे देश के वीर योद्धा। तो उनकी जो मां थी जीजाबाई, शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली कौन थी? कौन थी? उनकी मां जीजाबाई थी। जब से शिवाजी उनके गर्भ में आए थे तब से ही उन्होंने बहुत अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया था। और जैसे ही शिवाजी का जन्म हुआ, वो भी छोटे से बच्चे थे 6 मास के पालने के अंदर, तो मां जीजाबाई उनके लिए संकल्प करती थी, उसको लोरी सुनाती थी, है ना, पालने में झुलाती थी और उसको लोरी सुनाती थी, ये देश दुखी एक वीर बिना, एक वीर बिना रणधीर बिना। उस समय मुस्लिम का राज्य था तो उस समय जो है ना बड़ी देश के ऊपर संकट था, तो वो उसको लोरी सुनाती थी कि ये देश दुखी है एक वीर के बिना, एक रणधीर के बिना, और वो तू बनेगा। अब वो इतना छोटा सा नन्हा सा बच्चा, फिर वो आगे कहती थी तू राम कृष्ण का वंशज है, वो तब थे लेकिन तू अब है। राम और कृष्ण सतयुग में त्रेता में हुए थे लेकिन तू उनकी छवि लेकर के आया है, तू उनका ही रूप लेकर के आया है, तू ही इस संकट को मिटाएगा। अब इतना छोटा बच्चा जो कुछ सुन नहीं रहा, कुछ समझ नहीं रहा, लेकिन उस मां की जो पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी थी, जो देशभक्ति की एनर्जी थी, वो शिवाजी की उस आत्मा के अंदर जा रही थी। और वही शिवाजी होकर के क्या बने, जिन्होंने पूरा इतिहास रच दिया, जिन्होंने मुगलों के चक्के छुड़ा दिए। तो संस्कार बच्चे को कहां से मिलते हैं? मां से मिलते हैं, घर से मिलते हैं। आपकी जो सबसे बड़ी पूंजी है ना, वो आपके बच्चे हैं, उनके संस्कार हैं। आप उनको कितना भी बड़े से बड़ा अमाउंट उनके लिए जमा कर देना बैंक में, कार कोठी सब कुछ दे देना, लेकिन उनके पास संस्कार नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ खराब कर देंगे। इसलिए माता पिता को एक एग्जाम्पल बनकर के अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, सबको दुआएं देनी है। ये जीवन का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है, और संकल्प का जीवन के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार होता है। हम जितना अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उतना जीवन शक्तियों से, गुणों से भरपूर होता जाता है। अंत में मैं आपको 4-5 संकल्प देना चाहूंगी, जिनका प्रयोग अगर आप जीवन में करेंगे तो सचमुच में जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, तनाव डिप्रेशन सब जीवन से भाग जाएगा। सुबह सुबह उठते ही हमें पहला संकल्प, क्योंकि यहां हमें आत्मा का ज्ञान भी मिला, ईश्वर की पहचान भी मिली, तो सवेरे सवेरे उठते ही एक तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि सोने से पहले एक घंटा और जागने के बाद का एक घंटा ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय हम जो कुछ सोचते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वो हमारे चित्त में बैठ जाता है। अगर सुबह सुबह उठते ही हमने कुछ टीवी में या अपने मोबाइल में कुछ गलत व्यर्थ की बातें देखी, सुनी, पढ़ी, जिनका मेरे जीवन से कोई विशेष कनेक्शन नहीं है, वो मेरे चित्त में बैठ गई और सारा दिन मेरा चिंतन उसी दिशा में चलेगा, तो मेरी संकल्प शक्ति खराब होगी। इसलिए सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले एक घंटा हम अपना मोबाइल, हम अपना जो भी है उसको बिल्कुल बंद कर दें और बड़ा शुद्ध चिंतन करें, और उस शुद्ध चिंतन में पांच संकल्प करें। सबसे पहला संकल्प सुबह सुबह उठते ही ये करना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम ए पीसफुल सोल। मुझे सारा दिन सबके साथ शांति का व्यवहार करना है। दूसरा संकल्प, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। आई एम पावरफुल सोल, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान ईश्वर की संतान हूं। तो जितना हम वो शक्तिशाली संकल्प करेंगे, उसको रियलाइज करेंगे, तो जीवन में वो शक्ति भरती जाएगी। तीसरा संकल्प, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं और सदा रहूंगा। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं और सदा स्वस्थ रहूंगा। धीरे धीरे अगर कुछ टॉक्सिक भी होंगे तो वो भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। मेरा परिवार, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। जैसा हम उनको देखना चाहते हैं वैसा ही हमें उनके बारे में सोचना है। और उसके साथ साथ मैं बहुत सुखी हूं। कभी भी ये नहीं सोचना ये दुख है, ये समस्या है, ये वो है, क्योंकि मैं सुखदाता ईश्वर की संतान हूं। तो इस प्रकार से जितना हम ये पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स रात को सोने से पहले भी और सुबह उठने के बाद भी रचेंगे, तो ये दिन भर काम करेंगे। और रात को जब हम अच्छा सोचकर सोएंगे तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रात भर भी पॉजिटिव एनर्जी ही जनरेट होगी, नेगेटिव नहीं। तो इसलिए हमें अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल रखते हुए अपने जीवन को खुशनुमा, शांति से भरपूर, शक्ति से भरपूर अपने जीवन को और अपने परिवार को रखना है। ओम शांति।